समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करने से पहले यह जानना आवश्यक प्रतीत होता है कि प्रक्रिया किसको कहते हैं। प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई प्रक्रिया कुछ सीमित समयों तक ही रहती है, बल्कि यह अनवरत चलती रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया भी जीवंत पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात यह व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। इस प्रकार यह एक लंबी एवं अनवरत चलने वाली प्रक्रिया कही जा सकती है। गिलिन एवं गिलिन ने समाजीकरण की प्रक्रिया को तीन स्तरों में विभाजित किया है। ये तीन स्तर निम्नलिखित हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, पूर्णावस्था। समाजीकरण की इन प्रक्रियाओं का उल्लेख उन्होंने पुस्तक कल्चर सोशियोलॉजी में किया है। समाजीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण बाल्यावस्था का बहुत महत्व अधिक है। यही वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति के जीवन की नींव पड़ती है। यदि नींव मजबूत होती है तो इमारत भी बुलंद होती है। इस प्रकार यह चरण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बालक के ऊपर परिवार का मूल प्रभाव इसी अवस्था में पड़ता है। माता पिता या परिवार के अन्य सदस्य बच्चे के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, बच्चे के मानस पटल पर वही अंकित हो जाता है। उसी प्रकार की आदतों का विकास बच्चों में हो जाता है जैसा उसे बचपन में सिखाया जाता है। बच्चा अपने परिवार के सदस्यों का व्यवहार अनुकरण करता है। वह परिवार व समाज की संस्कृति के अनुरूप ही अपने आप को ढालता है तथा उसी रूप में उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। परिवार बच्चों के समाजीकरण की प्रथम पाठशाला है, क्योंकि जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का समय उसका अधिकांशतः परिवार में ही व्यतीत होता है। फलतः उसमें अपने परिवार की संस्कृति की अमिट छाप पड़ जाती है, जिससे वह जीवन भर प्रेरित होता रहता है। बच्चा बचपन में ही जो कहानियां पढ़ता एवं सुनता है उसका प्रभाव भी उस पर पड़ता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तब वह अपने खेल के साथियों के संपर्क में आता है। यहाँ वह अपने खेल के साथियों के व्यवहारों से भी परिचित होता है तथा अपने व्यवहारों से खेल के साथियों को भी प्रभावित करता है, अर्थात दोनों एक दूसरे के व्यवहारों से परिचित हो जाते हैं तथा सामंजस्य स्थापित करते हैं। इस प्रकार विभिन्न प्रकारों से बाल्यावस्था में व्यक्ति का समाजीकरण होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया की द्वितीय अवस्था युवावस्था में व्यक्ति बड़ा होकर अनेक द्वितीयक समूहों में संपर्क में आता है। इस अवस्था में वह विद्यालय एवं महाविद्यालय में पठन पाठन का कार्य करता है। यहाँ उसका संपर्क अनेक लोगों से होता है। संपर्क के कारण एक दूसरे से व्यक्ति अंतःक्रिया करता है और इसके फलस्वरूप कई नई नवीन विचारधाराओं का समावेश होता है। दरअसल इस अवस्था में उसमें कई तरह के गुणों एवं अवगुणों का समावेश होता है, क्योंकि उसके संपर्क का दायरा अधिक होता है। इस अवस्था में वह समाज में अच्छी और बुरी चीज़ों का विश्लेषण करना शुरू कर देता है। धर्म के महत्व आदि के संबंध में भी वह सोचना शुरू कर देता है। अगर वह किसी राजनीतिक दल के संपर्क में आता है तो उसके गुणों एवं अवगुणों का भी विश्लेषण करना शुरू कर देता है। सिनेमा आदि को देखकर वह उससे भी प्रेरित होना शुरू कर देता है। संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वितीयक अवस्था में व्यक्ति विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, मनोरंजनात्मक एवं अन्य पहलुओं से परिचित होता है और उससे अपने आप को अनुकूलित करता है। उसे जो व्यवहार अच्छा लगता है उसे अपना लेता है और जो व्यवहार उसे बुरा लगता है उसे छोड़ देता है। इस अवस्था में व्यक्ति में इतना ज्ञान अवश्य हो जाता है कि वह अच्छे एवं बुरे में अंतर कर सके। इस प्रकार युवावस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया का महत्व बहुत अधिक होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के संपर्क का दायरा बहुत बढ़ जाता है और विभिन्न व्यक्तियों के समाजीकरण करने के फलस्वरूप उसमें अनेक गुणों का विकास होता है। समाजीकरण की प्रक्रिया की तीसरी अवस्था गिलिन एवं गिलिन के अनुसार पूरा अवस्था है। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति पूर्ण रूपेण परिपक्व हो जाता है, उसमें सभी तरह के मानवीय गुणों का समावेश हो जाता है। इस अवस्था में व्यक्ति की शादी होती है। शादी हो जाने से एक और प्रकार का सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। विवाह उपरांत उसे अपनी पत्नी अर्थात विपरीत लिंग के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन तभी सुखी रह सकता है जब पति पत्नी के सहयोग हो और एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित कर सके। समाजीकरण की प्रक्रिया इस अवस्था में व्यक्ति की सहायता करता है। इस अवस्था में व्यक्ति को अपने बाल बच्चे सामाजिक धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाओं आदि में भी सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। यहाँ वह बहुत कुछ सीखता है और इस प्रकार उसका समाजीकरण होता है। वह अपने कार्यालय एवं अन्य जगह जाता है जहाँ वह उसका संपर्क हो। इस प्रकार कहा जा सकता है कि पूरा अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया का स्वरूप विस्तृत एवं जटिल एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। समाजीकरण की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन बाल्यावस्था से लेकर पूर्वावस्था तक का समय इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं अवस्थाओं के दौरान व्यक्ति सभी प्रकार के व्यवहारों को सीखता है तथा अपने आप को समाज के प्रतिष्ठित सदस्य के रूप में स्थापित करता है। संभवतः इसीलिए गिलिन एवं गिलिन ने समाजीकरण की प्रक्रिया के इन तीन अवस्थाओं की चर्चा की है। H.M. जॉनसन ने समाजीकरण की प्रक्रिया के चार स्तरों का उल्लेख किया है। इनका कहना है कि इन्हीं चार स्तरों में समाजीकरण की प्रक्रिया निहित है। उनका यह भी कहना है कि समाजीकरण की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है तथा उसी के अनुरूप अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करता है और इस प्रकार उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। जॉनसन ने समाजीकरण की जिन चार स्तरों की चर्चा की है, उनमें तीन स्तरों पर परिवार ही समाजीकरण की प्रमुख संस्था है। H.M. जॉनसन के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया के चार स्तर निम्नलिखित हैं: मौखिक अवस्था, शैशवावस्था, गुप्त अवस्था तथा किशोरावस्था। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया का पहला स्तर मौखिक अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा लोगों के साथ मौखिक निर्भरता स्थापित करता है। चूँकि बच्चा एक जैविक प्राणी होता है, इसलिए उसे शुरू शुरू में अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में परेशानी होती है। सांस लेना, पेट भरना, गर्मी एवं ठंड से अपनी रक्षा करना आदि अनेक आवश्यकताओं से बचने के लिए वह रोता चिल्लाता है, अर्थात वह संकेतों के माध्यमों से दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करता है। इस अवस्था में बच्चे की अंतःक्रिया केवल अपने माता पिता के साथ होती है, परिवार के अन्य सदस्यों के साथ नहीं। इस अवस्था में परिवार के अन्य सदस्य भी उससे माता पिता के ही समान व्यवहार करते हैं। मौखिक अवस्था को फ्रायड ने प्राथमिक परिचय के स्तर की संज्ञा दी है। इस स्तर के संबंध में जॉनसन ने लिखा है कि इस समय भूख पर कुछ नियंत्रण होने लगता है और शिशु को माता के साथ शारीरिक संपर्क की धूमिल सी उद्दीपन भाव की अनुभूति होने लगती है। इस प्रकार मौखिक अवस्था समाजीकरण की प्रक्रिया का पहला स्तर कहा जा सकता है। इस स्तर पर बच्चे की अवस्था असहाय होती है और वह इस स्तर में दूसरों पर निर्भर करता है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया का दूसरा स्तर शैशवावस्था है। इस अवस्था में सभी समाजों में अलग अलग उम्र से आरंभ होती है, लेकिन अक्सर 1 से 3 वर्ष के बीच की उम्र या अवधि शैशवावस्था कहलाती है। इस अवस्था में बच्चों में शौच करने का ज्ञान हो जाता है, साथ ही सफाई सुथरा आदि का भी ज्ञान बच्चे को कराया जाता है। जॉनसन का कथन है कि इस स्तर पर बच्चे से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने आप को थोड़ा बहुत संभाले। इस स्तर में बच्चा अपनी तथा अपनी माँ की भूमिका में अंतर को समझने लगता है। बच्चे को परिवार से प्यार और स्नेह की शिक्षा दी जाती है। बच्चा भी परिवार के सदस्यों के बदले में प्यार में स्नेह देना शुरू कर देता है। इस स्तर में बच्चे को सही एवं गलत में भेद करना सिखाया जाता है तथा उससे अपेक्षा की जाती है कि वह सही व्यवहारों को अपनाए। यदि वह अच्छा एवं सही व्यवहार करता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है, और अगर गलत व्यवहार करता है तो उसे दंडित किया जाता है। इस प्रकार इस स्तर में बच्चा अपने परिवार के व्यवहारों प्रतिमानों को सीखता है। इस स्तर पर सभी बच्चे का समाजीकरण अधिकांशतः माँ के द्वारा ही होता है। बच्चा बहुत बातों के लिए माँ पर निर्भर करता है और वह माँ के साथ निकटता रखता है। इस संबंध में जॉनसन ने लिखा है, माँ बालक के संदर्भ में साधक नेता है, क्योंकि अभी भी वह उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। बालक का इस प्रणाली में योगदान मुख्यतः भावात्मक होता है, क्योंकि कम आयु का होने के नाते वह दूसरे के किसी काम को संपन्न कराने में योगदान नहीं दे पाता। इस स्तर पर जो व्यक्ति बच्चे के समाजीकरण में योगदान देते हैं, उन्हें अपने सामाजिक मूल्यों तथा व्यवहारों के प्रति स्वसजग रहना पड़ता है, ताकि वे बच्चे को सही रूप से प्रशिक्षित कर सकें। इस प्रकार यह पता चलता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया का यह स्तर अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा बहुत सी बातों को सीखता है तथा उस अनुसार कार्य करता है। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया का तीसरा स्तर गुप्त अवस्था है। यह अवस्था मुख्यतः 4 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक रहती है। इस स्तर पर बच्चे का संपर्क परिवार के सभी सदस्यों के साथ हो जाता है। इस स्तर पर बच्चा अनेक भूमिकाओं का निर्वाह करता है। इस स्तर पर बच्चे का माँ अपने साथ उद्दीपन होता है। वह माँ के साथ प्रेम करता है तथा उससे वियोग होने पर वह अपने आप को सामान्य महसूस नहीं करता। इसका कारण यह है कि इस स्तर में माँ के संसर्ग में आने पर उसे दैहिक सुख की प्राप्ति होती है। बच्चे का अपनी माँ के लिए लगाव समाजीकरण के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माँ बालक को उसके उचित व्यवहार के लिए दैहिक संपर्क का सुख प्रदान करती है, और यह उद्दीपक लगाव पारस्परिक होता है। इस प्रकार यह पता चलता है कि इस स्तर पर भी बच्चे के लिए माँ एवं परिवार का बहुत महत्व है, और उन्हीं के द्वारा बच्चे का समाजीकरण होता है। जॉनसन के अनुसार इस स्तर पर बच्चों में एक प्रकार की अलग भावना का विकास होता है। फ्रायर ने इस भावना को ओडिपल कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी है। इस भावना के कारण बच्चा अपने विपरीत लिंग से प्रेम और स्नेह की भावना का विकास होता है तथा अपने लिंग के साथ ईर्ष्या की भावना विकसित हो जाती है। इस अवस्था में लड़का अपने पिता से ईर्ष्या और अपनी माता से प्रेम करता है, जबकि लड़की अपनी माता से ईर्ष्या एवं अपने पिता से प्रेम रखती है। इस स्तर पर बच्चे पर यह दबाव भी बना रहता है कि वह अपने लिंग भेद के आधार पर एक विशेष प्रकार का व्यवहार करे। लड़का एवं लड़की दोनों को उनके उचित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जाता है तथा गलत व्यवहार के लिए बात सुननी पड़ती है। इस स्तर पर बच्चा स्कूल जाता है, वहाँ उसे अपने साथियों के साथ स्वयं संबंध स्थापित करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ निर्देश देने के लिए परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं रहता। इस स्तर पर बच्चों में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। यह आकर्षण अप्रकट अथवा गुप्त होता है। इस स्तर को तादम्य स्थापित करने का स्तर भी कहा गया है, क्योंकि इस स्तर पर बच्चे को विभिन्न जगहों पर विभिन्न व्यक्तियों से तादम्य स्थापित करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसे सामाजिक भूमिका के साथ ही तादम्य स्थापित करना पड़ता है। सामाजिक समूह में से इतना तादम्य स्थापित इस रूप से करना पड़ता है कि वह समूह की भूमिका प्रणाली को अंतरीकृत कर लेता है तथा अपने आप को उस समूह का एक सदस्य मानने लगता है। सामाजिक भूमिका को सिखाने का काम पिता करते हैं। प्रत्येक बच्चे को सामाजिक भूमिका सिखाने के लिए एक पिता आदर्श काम करते हैं। पिता की भूमिका इस रूप में प्रकट होती है कि वह अपने बच्चों को जातिगत पेशा से अवगत कराकर उसे उसका प्रशिक्षण भी देते हैं। इस संबंध में जॉनसन ने एस्किमो जनजाति का उदाहरण देते हुए कहा है कि वहाँ पिता अपने बच्चे को छोटे छोटे धनुष बाण बना कर देते हैं तथा जानवर के खिलौने बना कर देते हैं, ताकि वह बड़ा होकर जानवरों का शिकार कर सके। इस प्रकार यह पता चलता है कि पिता अपने बच्चे को जातिगत व्यवसाय से परिचित कराते हैं, ताकि आगे चलकर वह उस व्यवसाय को अपना सके। अतः यह कहा जा सकता है कि गुप्तावस्था समाजीकरण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण स्तर है, क्योंकि इस स्तर में बच्चों में समझदारी विकसित होती है और वह बहुत से समूहों के संपर्क में भी आता है। प्रत्येक जगह से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। साथ ही इस स्तर पर उसमें अनेक मनोभावों का विकास भी होता है। यह कहा जा सकता है कि यह स्तर परिवर्तन का स्तर है। जिस प्रकार से इस स्तर में बच्चे का समाजीकरण होता है, उसी प्रकार उसमें गुण विकसित होते हैं। जॉनसन के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रिया का चौथा स्तर किशोर अवस्था है। इस स्तर पर आरंभ यौनावस्था के शुरू होते ही हो जाता है। इस स्तर पर लड़के एवं लड़की अपना स्वतंत्र व्यवहार करने की इच्छा रखते हैं, जबकि माता पिता पूर्वतः अपना नियंत्रण कायम रखना चाहते हैं। हालांकि इस स्तर में बच्चे माता पिता के नियंत्रण से थोड़ा बहुत स्वतंत्र हो जाते हैं। इस स्तर पर लड़का एवं लड़की की मनोदशा नाजुक होती है। लड़का एवं लड़की से इस स्तर पर यह आशा की जाने लगती है कि वह अपना निर्णय स्वयं लें तथा ऐसा निर्णय लें जो परंपरागत होने के साथ सामाजिक व्यवहार प्रतिमान के अनुरूप हो। इस अवस्था में किशोरों को आस पड़ोस एवं विद्यालय आदि से भी अपना सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। यह अवस्था तनाव की अवस्था होती है। बहुत से पश्चिम देशों में इस अवस्था तक आते आते किशोर आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर अपना घर बसा लेते हैं। इस स्तर पर किशोरों से आशा की जाती है कि वे अपनी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अनुकूल अपना व्यवहार प्रदर्शित करें। इस संबंध में लुंडबर्ग ने पुस्तक सोशियोलॉजी में लिखा है कि जब व्यक्ति का व्यवहार समाज के अनुरूप हो जाता है तो उसे समाजीकरण में व्यक्त किया जाता है। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति इतना परिपक्व अवश्य हो जाता है कि वह स्वयं भी सामाजिक मानदंडों के अनुसार व्यवहार करे और दूसरे को भी इसी अनुरूप व्यवहार करने की प्रेरणा प्रदान करे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि किशोर अवस्था व्यक्ति के जीवन में एक नाजुक अवस्था होती है। इसमें बहुत सारे बदलाव आते हैं तथा व्यक्ति को सभी से सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। विद्वानों ने समाजीकरण की प्रक्रिया में अधिकतर चार स्तरों या अवस्थाओं का वर्णन किया है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन चारों स्तरों से गुजरने के बाद बहुत हद तक सामाजिक प्रशिक्षण पूरा हो जाता है। लेकिन समाजीकरण की एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। हालांकि पहले की अवस्थाओं में समाजीकरण हो जाने से आगे की अवस्थाओं में समाजीकरण होना कठिन नहीं होता, फिर भी कुछ ना कुछ समस्याएं एवं सामंजस्य की समस्याएं जीवन पर्यंत चलती रहती हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समाजीकरण की अगली अवस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाए। समाजीकरण की प्रक्रिया में किशोर अवस्था के बाद युवावस्था आता है। इस अवस्था में व्यक्ति को कई तरह की भूमिकाओं का निर्वाह करना पड़ता है। इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति की शादी हो जाती है, उसे पति पत्नी की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है, साथ ही परिवार का भरण पोषण भी करना पड़ता है। हालांकि इस अवस्था में सभी समाजों में समाजीकरण की प्रक्रिया अलग अलग पाई जाती है। जहां पश्चिमी समाजों में विवाह प्रेम के आधार पर होता है, वहीं भारतीय समाजों में विवाह माता पिता के राय से होता है। पश्चिम समाजों में पति पत्नी दोनों कमाते हैं तथा आर्थिक रूप से स्वतंत्र भी होते हैं, उनमें विवाह विच्छेद एक साधारण बात है। इसका कारण यह है कि पति पत्नी दोनों में से विवाह विच्छेद करने के कारण आर्थिक संकट का भय नहीं होता। इसके विपरीत भारतीय समाज में नवदंपति माता पिता के साथ एक घर में रहते हैं तथा बहुत हद तक आर्थिक रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं। माता पिता के साथ रहने के कारण समाजीकरण की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति को बहुत सारे सामंजस्य स्थापित करने पड़ते हैं। पति पत्नी विवाह से पहले एक दूसरे से अपरिचित रहते हैं। अगर दोनों का स्वभाव मेल खाता हो तो सामंजस्य में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन अगर दोनों का स्वभाव एक दूसरे से मेल ना खाता हो तो सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है। यही समस्या नववधू के सामने भी उपस्थित होती है। ससुराल में यकायक बिल्कुल नए माहौल से आती है। उसे अपने पति, सास ससुर तथा परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है, जिसमें कभी कभी अत्यंत कठिनाई आती है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि युवावस्था में लड़का लड़की दोनों को अपने परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करना पड़ता है। इस प्रकार वह बहुत कुछ सीखता है और समाजीकरण भी साथ साथ होता रहता है। उस अवस्था में युवकों से विभिन्न प्रकार के आर्थिक एवं सामाजिक भूमिकाओं के निर्वाह करने की आशा की जाती है, जैसे कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षक, राजनेता, वकील, व्यापारी आदि के रूप में व्यक्ति विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करता है। इस अवस्था में व्यक्ति किशोर अवस्था की स्वतंत्रता को खो देता है। इस अवस्था में अपने सहकर्मियों एवं उच्चाधिकारियों के संसर्ग में रहने से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है और इस प्रकार उसका समाजीकरण होता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि समाजीकरण की प्रक्रिया इस अवस्था में व्यक्ति बहुत सारी भूमिकाओं से सामंजस्य स्थापित करके उसका निर्वाह करता है। समाजीकरण की प्रक्रिया में युवावस्था के बाद पौरावस्था आता है। इन दोनों अवस्थाओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। पौरावस्था में परिपक्वता आ जाती है तथा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। इस अवस्था में बच्चे हो जाने पर व्यक्ति को पिता की भूमिका का निर्वाह करना पड़ता है। बच्चों के बड़े हो जाने पर उनकी शिक्षा, दीक्षा, विवाह शादी आदि का दायित्व व्यक्ति के माथे पर आ जाता है। जिसके कारण उनमें भावुकता व जोश का स्थान तर्क ले लेता है। हालांकि इस प्रकार के परिवर्तन से व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये कठिनाइयाँ पूर्व परिशिक्षित नहीं होती, इसलिए व्यक्ति इनका सामना कर लेता है। इस प्रकार पता चलता है कि पूर्वावस्था एक परिपक्व अवस्था है और इसमें तर्क की प्रधानता होती है। विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है तथा उसे अपने जीवन में ढालता है। इस प्रकार इस अवस्था में समाजीकरण की प्रक्रिया चलती रहती है। समाजीकरण की प्रक्रिया में पूर्वावस्था के बाद वृद्धावस्था आता है। सामान्यतः इस अवस्था में यह सोचा जाता है कि परिपक्व और अनुभवी वृद्धों को पढ़ाया नहीं जा सकता या सिखाया नहीं जा सकता। इस अवस्था में व्यक्ति अपनी सभी उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता है और वह अपने अतीत की ओर झांकना शुरू कर देता है। उसमें आत्ममंथन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शारीरिक दृष्टिकोण से बच्चे और बूढ़े दोनों में समानता है, क्योंकि दोनों ही क्षीण एवं दुर्बल होते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से बूढ़ों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने पदों, अधिकारों एवं लाभों का परित्याग करें। इसका कारण यह है कि वृद्धावस्था आते आते व्यक्ति इन दायित्वों को निभाने लायक नहीं रह जाता, पहले तो उन्हें अवकाश दे दिया जाता है। इस कारण वृद्धों में एक तरह पूर्वावस्थाओं में सामाजिकृत भूमिकाओं के विसर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसे विसामाजिकरण कहा जाता है, तो दूसरी ओर अवकाश कार्यों में सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस अवस्था में पूर्व मित्र पुनः प्रखर हो जाते हैं, जिनके साथ वे अपना समय व्यतीत करते हैं। यद्यपि वृद्ध सामाजिक कार्यों का परित्याग कर देते हैं, फिर भी एक परामर्शदाता के रूप में कार्य करते रहते हैं। समाज में वृद्धों का आदर एवं सम्मान किया जाता है, हालांकि विभिन्न कारणों से उनके सम्मान में आधुनिक युग में कमी आई है। समाजीकरण की प्रक्रिया के उपयुक्त अवस्था का अवलोकन करने से पता चलता है कि यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था में व्यक्ति कुछ न कुछ करता रहता है।